परमपिता परमात्मा से मेधा बुद्धि की कामना करते हुए मंत्र पाठ करेंगे। ओम याम मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अत्र भवतां सर्वेषां पुनः एकदा स्वागतम्। तो दो अध्याय तक की परीक्षा हो चुकी है, वो तो मैं संचिका देख ही लूँगा, तो विषय तो समझ में आ ही गया होगा, निरुक्त क्या है। ऐसा तो किसी कोई नहीं है जिसको नहीं समझ में आया। निरुक्त क्या कहना चाह रहा है इतना तो समझ में आ ही गया होगा ना, क्या इसका तात्पर्य है। निर्वचन तो इसका मुख्य विषय ही, अभी तो ये करते ही रहेंगे, बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, अभी तो समझो भूमिका ही हुई है। तो अभी जो आगे पाठ चलेगा इसमें निरुक्त का, अभी जो दो अध्याय तक हुआ है, निरुक्त का यानी निघंटू का पहला अध्याय हो चुका है। निघंटू के जो पांच अध्याय हैं उसमें से पहला अध्याय हो चुका है, अब प्रारंभ होगा दूसरा, तीसरा, मतलब दूसरा अध्याय निघंटू का चलेगा। निघंटू में दूसरा अध्याय का पहला किसके नाम है? कर्म नामानी। तो कर्म के यहाँ नाम चलेंगे, यानी निघंटू का दूसरा है, इसका तीसरा है। हाँ, क्योंकि जैसे अष्टाध्यायी है और उसकी व्याख्या महाभाष्य है, तो ये निघंटू की व्याख्या है। तो कौन से की व्याख्या अब आगे की जा रही है? कर्म की व्याख्या की जा रही है, अर्थात द्वितीय अध्याय की व्याख्या प्रारंभ की जा रही है। कर्म नामानि उत्तराणि षड्विंशति, षड्विंशति उत्तराणि अग्रे ये साम विषय उच्यन्ते तानि मानि कर्म नामानि सन्ति। तो जो आगे कहे जा रहे हैं ये 26 क्रिया के नाम है, अर्थात क्रिया जो है वो वैसे तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार, महाभाष्यकार के अनुसार पांच प्रकार की क्रिया है। कौन कौन सी? अंत में क्या बताया था? गमनमिति। पंच प्रकार काणि कर्माणि भवन्ति, ये तो महाभाष्यकार का है और वैशेषिक दर्शन का भी ये है। किंतु यहाँ जो है इसमें 26 क्रिया के नाम बता रहे, मतलब कर्म में 26 प्रकार के गुण हो सकते हैं। तो अब इदानीं पृच्छन्ति कर्म कस्मात्, कर्म कस्मात् अर्थात केन हेतुना अस्य शब्दस्य अस्मिन् क्रियायाम निर्वचनं भवति, किस हेतु से इस शब्द का इसमें निर्वचन होता है, क्यों कहा जाता है, अर्थात कर्म को कर्म क्यों कहते हैं, ये इसका पूरा वैज्ञानिक विषय है। तो बता, उत्तर उत्तरम प्रदीयते, क्रियते इति सतः, सतः क्रियते इति, अर्थात यतो सतः यतो ही क्रियते, जो किया जाता है वो कर्म है। सतः अनेन हेतुना, जो किया जाता है इसलिए इसका नाम क्या है? कर्म है। अर्थात दुनिया में जो भी किया जाता है, और किया जाने में क्या अर्थ है, किया जाने का क्या अर्थ है? क्रियते इति सतः, जो किया जाता है वो कर्म है, पर क्या, बात तो वही खुली नहीं पूरी, तो वो क्या, अब वो हिंदी में जाना पड़ेगा कि जहां हिलना डुलना सोचना विचारना ये सारा किया जाए उसका नाम कर्म है। और ये तीन विधि से होता है, पहली विधि मानसिक है, दूसरी विधि वाचिक है, और तीसरी विधि शारीरिक है, जो क्रिया से जिसका संबंध है। तो कितने प्रकार का हुआ इसका विभाग, कौन कौन से? मनसा, वाचा और कर्मणा, ये तीन विभाग हैं। जब व्यक्ति कर्म करता है तो वो उसका क्या होता है, ये कर्म है क्या? ये तो हमने जो किया जाता है, किंतु किया जाने के बाद वो क्या बन जाता है, क्या हो जाता है? जैसे आपने विचार किया कि भाई मुझे चारों वेदों का विद्वान बन के ऋषि बनना है, हम असुरों को छोड़ देते कि आपने कोई असुरों का विचार किया, तो ये जो मन में विचार आया ये क्रिया है, ध्यान देने की बात है, कर्म है। ये कर्म क्या बनाएगा आपको, क्या क्या अंदर प्रभाव हो सकता है, क्योंकि बात कर्म की चल रही है, सारा कुछ इसी पे टिका हुआ है, तो इस पे तो थोड़ी व्याख्या जरूरी है। तो ये क्या करेगा आपको, क्योंकि कर्म तीन प्रकार का है, मन से, वाणी से और शरीर से। तो मन से जो आपने ऐसा विचार किया और वाणी से बोला भी, क्रिया में तो आप करेंगे अब आगे, तो ये क्या दिखाएगा आपको? हाँ जी साहित्याचार्य, षड्भाव जो वो जो आठ अस्थाई भाव होते हैं उसमें कौन से में घटे गए? आठ अस्थाई भाव कौन से हैं? जुगुप्सा है, अद्भुत तो वो अलग विषय है, सड़नी आठ है, आठ अस्थाई भाव हैं, आठ ही रस हैं, नोवा तो शांत रस मान लिया जाता है। तो उसमें उत्साह एक अस्थाई भाव है, उत्साह भी है या नहीं है? तो अब जब आपने ऐसा किया तो किस में घटेगा? उत्साह में घटेगा, क्योंकि ये आपका एक अस्थाई भाव है आत्मा का, ये पक्की बात है, ऐसा घटता है कभी, जब साहित्य की थोड़ी चर्चा करेंगे तब उसमें घटाएंगे। तो ये जो उसमें उत्साह में घटेगा, उत्साह क्या है, उत्साह कस्मात, उत्साह कस्मात गौतम महोदय? बिल्कुल ठीक निर्वचन किया, अच्छी प्रकार से उत्कृष्ट रूप से जिसके द्वारा मर्षण किया जाता है। किसका मर्षण किया जाता है? दो ही शक्तियां हैं, आसुरी और देवी, तो आसुरी शक्ति का जिससे अच्छी प्रकार से जिससे विनाश किया जाता है। अब ये देखिए, जब आपने संकल्प लिया तो अब क्या हुआ, अग्न्याधान हुआ, यज्ञ तो आगे होगा। संकल्प क्या काम करता है, अग्न्याधान करता है। संकल्प का दूसरा पर्यायवाची क्या है, अग्न्याधान है। जब अग्न्याधान आपने किया तो अब आप आगे यज्ञ कर पाएंगे, यदि अग्न्याधान ही नहीं किया तो यज्ञ कैसे करेंगे? अब क्या होगा कि जैसे ये हमेशा आपका उसको चिंतन मन में, इसका स्थाई भाव किस रूप में पड़ा, संस्कार के रूप में, अब ये क्या बना, संस्कार बना। अब ये एक संस्कार नहीं बना, ऐसे हजारों संस्कारों को जगाए गए। ये ध्यान देने की बात है कि हम कहते भाई मन से हमने तो किया, क्या बिगड़ता है? मन से करने से बहुत ज्यादा बिगड़ता है। अगर मन में आप अच्छे विचार रखेंगे तो देखो क्या बन सकते हैं आप कुछ वर्षों में, और मन में बुरे विचार लाने से कितनी बड़ी हानि होती है। अब ये क्या करेगा, जो स्थाई भाव बना है, इसका नाम है स्थाई भाव। संस्कार क्या है, साहित्य की भाषा में, दार्शनिक भाषा में कहें स्थाई भाव है। तो ये स्थाई भाव संस्कार के रूप में क्या है कि अब ये संकल्प क्या है, संस्कार क्या है, ये विद्युत तरंग समझ लो एक प्रकार की, आधुनिक भाषा में कहें। अब ये आसपास के जितने भी संस्कार ऐसे हैं जो आपको इस कार्य में सहयोगी होंगे उनको जगाएगा, और जो इसको रोकने वाले उनको क्या करेगा, दबाएगा। तो ये मानसिक इतनी भारी क्रिया अंदर होती है पता ही नहीं लगता, क्योंकि मन की गति इतनी तीव्र है कि हमें पता ही नहीं लगता अंदर क्या क्या हो रहा है, जब हो जाता है तब लगता है। व्यक्ति यदि फेल होता है, यदि व्यक्ति हार मानता है, इसका मतलब वो अचानक हार नहीं मानी उन्होंने, वर्षों से अंदर तैयारी चल रही है। अचानक हार व्यक्ति कभी नहीं मानता, ये ध्यान देने की बात है। हृदय घात हुआ है, अचानक हो गया, बैठे बैठे को अचानक, कुछ नहीं हुआ, वर्षों से तैयारी चल रही थी। इसलिए हारता है राही उस राह पर, जब मंजिल होती है कदम दो चार पर, तो दो चार पे हार जाता है व्यक्ति ने अगर तैयारी नहीं की तो लगातार। तो इसलिए ये तैयारी है। तो आप पता लगा मानसिक क्रिया कैसे होती है, क्या काम करती है। स्वामी जी महाराज, ये प्राण है और प्राण उत्साह और जो सात्विक प्राण है ये क्या है, मन की आसुरी वृत्तियों को नष्ट करने वाला एक तत्व है, ऐसा समझ ले। तो अब जो भी इसके सहयोगी हैं, मतलब जैसे भी वो संस्कार, तो ऐसे अगर और अंदर जाएं तो जो दिमाग के जो तंतु हैं ना, उनमें जो ये स्मृति है, अनुभूता विषय अनुसंक्रमों से जो स्मृति है वो उसमें तंतुओं में इकट्ठी है, उसके माध्यम से आ रही है। स्मृति कमजोर होने का कारण भी एक है कि उन तंतुओं में कुछ रुकावट आ गई है, ठीक से वो निकाल नहीं पाते हैं चीज़ों को। जब वहाँ निरंतर संस्कार जमे हुए हैं, अब ये विद्युत तरंग समझ लो उत्साह को। उत्साह क्या है ना, विद्युत तरंग है। हमने जीवन में अनुभव ही किया, सबने किया नहीं किया। एक व्यक्ति अच्छा वक्ता जोश में आता है तो मरे हुए व्यक्ति में जान आ जाती है। तो क्या है, विद्युत तरंगों का प्रभाव उसके शरीर में आ गया है। तो ये अब क्या करता है कि अब ये जिस सिद्धांत पे काम करता है उसका नाम है सत्व, और सत्व से जो विचार उद्भूत होते हैं उनको उद्भूत करता है, रजस तमस को दबाता है। तो प्रत्यक्ष है, आयुर्वेद भी इस बात को मानता है। हाँ, विद्यमान है उनको जगाता है और ऐसे दूसरी संस्कार को पैदा नहीं होने देता, तुरंत मन में आ जाती है। तो संस्कार हो तो हमारे अंदर जन्म जन्मांतरों के उनको जगा देता है, जैसे वर्षा। ये तो ऐसे समझ लो कि बीज पहले से पड़ा हुआ था और संकल्प ने उस बीज को वर्षा दे दी तो बीज उग गया। ये पूरा वैज्ञानिक है, इसमें कोई कल्पना नहीं है। तो क्रिया समझ में आई तीन प्रकार से, वाणी से आपको पता ही है, आत्मा बुद्धिया मनोयुंगते मन का, ये पूरा विज्ञान है। और क्रियते इति सतः, करने के बाद उसके दो फल हैं। अंदर तो फल है ही, वो तो तीनों क्रियाओं के फल मिलते हैं, किंतु अगर आपने बाहर जो शरीर से क्रिया की है उसके अनेक फल हैं, वो आप भोग ही रहे हैं। हम सब, तभी हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि दुख था उसका कारण जन्म है। अपत्य, अब आगे देखें अपत्य जी। अप अपन दंस वेश वेप विष्ट विवर्तम करवरम शक्मय कर्तु करुणम करणानि करांसी करन्ति करिकरत चक्रत कर्त्वम कर्तो कृत्वी धी सचि समी सिमी शक्ति शिल्पम इति षड्विंशति कर्मनामानि। अप अपन, अब ये सब धातुओं पे है सारा निर्वचन। अप और अपना, अब ये आप लिरी लंबने आपनोतेर हर्षवश्च, इससे अप शब्द बना। तो जो व्याप्त किया जाता है, जिससे अपने आप को बढ़ाया जाता है, ये भी एक क्रिया थी संसार को बनाना, इसको व्याप्त किया गया है, ईश्वर ने सब जगह फैलाया है, ये भी एक कर्म है। कर्म का एक गुण है फैलना, मतलब बिना क्रिया के कोई चीज दुनिया में फैल नहीं सकती, व्याप्त नहीं हो सकती। ऐसे शिल्पम जो है, शिल्प मतलब जितनी भी ये तकनीक विद्या है, जैसे कंप्यूटर क्या है ना, शिल्प शास्त्र में आता है, तो इसी के द्वारा नहीं होता है। हाँ, तो वो सारे यही हैं। शमी भी कल्प नाम है, शांति भी जो होती है। शिल्प का तो अर्थ है कि शिला संचलन है, कि जिससे ज्ञान गमर प्राप्ति व्यक्ति करता है, जितने भी यंत्र साधन तकनीक है ना, शिल्प विद्या में आती है। तो बिना कर्म के वो भी नहीं होते हैं, मतलब जितने भी क्रियाएं दुनिया में हो सकती हैं वो 26 प्रकार की हैं, ऐसा ही कहना चाह रहा है। वैसे तो अनंत है, पर इसी में आ जाते हैं, जैसे इन्होंने षड्भाविकार दिए थे और बाद में उसी में आ जाते हैं सारे, ऐसे ही यहाँ भी। अपत्य नामानी उत्तराणी पंचदश, अपत्य नामानी नाम है, संतान के वेद में 15 नाम है। कौन कौन से, किसने किसने याद किए? अपने गया जा अपत्यम यहु सूनु नपात प्रजा बीजम इति पंचदश अपत्य नामानि। तो 15 है। अब संतान को संतान क्यों कहते हैं, अपत्य कस्मात, अपत्यम कस्मात अपततम भवति, अपगत्य ततम भवति। इसका निर्वचन कैसे, अपगत्य ततम भवति, पिता से अलग होने के बाद विस्तार को प्राप्त करता है। पिता से अलग होने के बाद में जब संतान पैदा होती है, पिता से अलग ही तो हुआ, उसी का तो अंश है वो, तो फिर वो विस्तार को प्राप्त होता है। और नानेन पतती, माता पिता इसके कारण पतन को प्राप्त नहीं होते। इसलिए श्रेष्ठ संतान होगी तो नहीं होगा, नहीं तो पतन तो जरूरी है, क्योंकि संतान ही ऐसी बनाई है तो पतन ही होगा फिर तो। हाँ, अब वंश जोड़ लो आप, जो भी जोड़ो, इसका तो सीधा है नानेन पतती थी। अब आप वो आप वंशम पितरऊ, अब आप जो भी जोड़ो, यास्काचार्य ने तो इतने कहा नानेन पतती, पतनम पतंताम ना अपनोती, क्योंकि अच्छी श्रेष्ठ संतान होगी तो माता पिता का नाम होगा। महर्षि दयानंद का नाम आता है तो माता पिता का नाम तो आपको भी पता होगा ना क्या है, महर्षि है कृष्ण जी तिवारी और माता जी का नाम
करसन जी,
हाँ अमृत भाई, अमृत हाँ। देखो नाम याद है, और अपने दो तीन पीढ़ी पहले बताना,
आज का याद है।
चलो छह का बता दो, छठे का। तो ये है कि उनका नाम राम को याद करते हैं तो दशरथ और कौशल्या भी आ ही जाते हैं, तो इसलिए नाने ने पतती थी। अपत्य इव अपत्य, हाँ, जैसे पुत्र इव कुपुत्र, मतलब ऐसे ही मानना पड़ेगा, जैसे पुत्री पुत्र, कुपुत्र को क्या कहते हैं भाई, जैसे पुत्र है ना उस जैसा है, पुत्र नहीं है, फिर विशेषण लगा देते हैं कुपुत्र। पानी था वो तो सीधा ही पानी ने अपत्य में पानी नहीं, ये भी बताना पड़ेगा। माता का नाम दाक्षी था। अब देखो अभी तक नाम चल रहा है 7000 वर्ष हो गए। भाई अलग होना, जब व्यक्ति संतान पैदा करता है तो उसका ही तो अंश था वो, उससे उसके बाद वो विकास को प्राप्त करता है, जब तक शरीर में रहता है विकास को प्राप्त कहां करता है। तद यथा जनयितु, अब आगे ध्यान देने की बात है, इस पाद में जो मुख्य विषय है ये है कि कन्या दाय भागिनी है या नहीं है, मतलब अगर, क्योंकि ये भी एक सामाजिक नियम है ना, दाय भाग का अर्थ है कि जो पितु की जो संपत्ति है पिता की, वो कन्या को भी मिले
या ना मिले,
वेद क्या मानता है इस विषय में, विषय आज का लगभग यही है पूरा। तद यथा जनितु प्रजा एवं अर्थीय ऋचा उदाहरिष्याम, तद यथा जनितु प्रजा, जनितु अर्थात पिता, पिता तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पातावा पालितावा जनितावा, पालन करने वाला, रक्षा करने वाला, हाँ जन्म देने वाला। तो यहाँ जन्म देने वाले की बात चल रही है, ध्यान देने की बात है। तद यथा पारक्षणे है, पालन करना अलग है, रक्षा तो पालन तो नहीं कर रहा है, जान बचा दी कहीं आतंकवादियों से बचा दिया, कुछ आपत्ति काल में कहीं से रक्षा कर दी, किंतु पालन जो अभी भी कर रहा है, दोनों में अंतर है। पारक्षण है तो तीन पिता हैं, क्योंकि एक मंत्र भी आएगा आगे इसी में, सूर्य हमारा पिता है और पृथ्वी हमारी माता है, तो पिता सूर्य किस रूप में है, क्योंकि जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी तिब्बत के अंदर तो शुक्र कहाँ से आया था, ये एक विचारने की बात है ना, क्योंकि परमात्मा भी बिना पदार्थ के निर्माण नहीं कर सकता, तो वो शुक्र कहाँ से आया, तो एक आगे मंत्र आएगा जब करेंगे। पाता पालिता और जनिता, हाँ तीनों के मंत्र भी हैं, एक में भी हैं और अलग अलग भी हैं। तद यथा जनितु, अब ये साक्षात पिता वाली बात चल रही है जिसने उत्पन्न किया है, प्रजा एवं अर्थी है ऋचा उदाहरिष्या में, इस अर्थ में हम ऋचा का उदाहरण देंगे, अर्थात जो साक्षात संतान है उसको समझाने के लिए इसमें ये आगे बताएंगे कि भाई अपनी ही संतान होनी चाहिए, जो गोद आदि लेने वाली संतान है ना, अगर प्रयास आपत्ति काल तो अलग है पर संतान अपनी ही है, क्योंकि हम उसको संस्कार देंगे ना, वो कैसे संस्कार लेके आ रही है, वही कह रहे हैं आगे मंत्र दे रहे हैं। तरी सद्यम ही अर्णस्य रेकणो नित्यस्य रायः पतेः श्याम न शेषो अग्ने अन्य जातम अस्ति अचेतानस्य मा पथो विदुक्ष। इस मंत्र में बता रहे हैं कि परिषद्यम, परिषद्यम करते परित शद्यम, अर्थात इन्होंने अर्थ किया परिहर्तव्यम, दूसरों की जो संतान है ना अपनी तो ठीक है और दूसरों की को मतलब, मैं ये नहीं कि निषेध करें, ध्यान देने की बात है, कोई वेद पे आक्षेप ना करें कि व्यक्ति अपनी संतान की महत्ता करे। विदेशों में क्या हो गया है आप जाके देखे, संतान ही पैदा नहीं कर रहे, गोद ले जाते हैं भारत से दूसरे देशों से और अपनी संतान पैदा नहीं कर रहे, उन लोगों के लिए कि परिषद्यम परिहर्तव्यम ही अरणस्य, अरणस्य नाम है अपारणस्य, अर्थात दूसरे की जो संतान है ना वो दूर करने योग्य है, मतलब अपने ही औरस पुत्र होने चाहिए, अर्थात अगर नहीं हुई तो अलग बात है। रेकण नित्यस्य राय है पति श्याम, रेकण वैसे तो धन नाम में पढ़ा हुआ है पर संतान भी धन होता है, तो नित्यस्य राय पति श्याम, नित्यस्य नाम है स्वकीयस्य औरस पुत्रस्य, राय नाम है धनस्य है, वैसे यहाँ संतान है पति श्याम, हम स्वामी बन जाएं, मतलब दूसरे की संतान को न चाह के हम अपनी संतान चाहें जो माता पिता गृहस्थी हैं। न शेषो क्यों चाहें, आगे हेतु बता रहे हैं, न शेषो हे अग्ने अन्य जातम अस्ति, न शेष शेषो न अस्ति अन्य जातम, अन्य की जो संतान है अन्य से जो पैदा हुआ है वो हमारे संतान नहीं है, किंतु किसकी हो सकती है, अचेतानस्य जो जानवान नहीं है, वो तो मान लेंगे जैसे विदेश में हो गया कि भाई संतान पैदा नहीं कर रहे गोद लिया हो, है ना, तो ऐसा ना करें, अपनी ही संतान होनी चाहिए। मूढ़ व्यक्ति ऐसा सोचता है कि गोद ले लूंगा बच्चों की क्या जरूरत है, शेष अपत्य पुत्र ही लेना है, क्योंकि पुत्र भी एक धन है ना, पुत्र भी एक धन है, तो यहाँ रायकार इन्होंने धनी धन है, वैसे तो धन नाम में पढ़ा है पर रही राय और राय, हाँ षष्ठी होनी चाहिए, रही शब्द है ना, बहुवचन में पढ़ा हुआ है, उसमें धन नाम में पढ़ा हुआ है, और कभी कभी वहां विभक्ति भी पढ़ देते हैं, द्वितीय मान लो द्वितीय में भी तो बहुवचन में वही आएगा, कर्म में जैसे षष्ठी हो जाती है कर्म में, तो द्वितीय तो है ना, हाँ तो षष्ठी मानना पड़ेगा। नित्यस्य राय है पतय श्याम, हे अग्ने अन्य जातम न शेषो अस्ति, अन्य से उत्पन्न संतान हमारी संतान नहीं हो सकती, अचेतानस्य तो भवितुमर्हति, यहाँ एक अध्याय करना पड़ेगा, अचेतानस्य जो अज्ञानी है वो तो ऐसा मानेगा। मा पथो विदुक्षे, मा मत पथ है मार्ग से विदुक्षे, हमें दूर मत करो दूषित मत करो, अर्थात हमें इतना समर्थशाली बनाओ, हमें ऐसी बुद्धि दो कि हम अपनी संतान पैदा करें। निघंटु में नाम नहीं दिया, राय विराय जैसे धन क्या हो, धन होता है ना, पंद्रह में नहीं आया, ठीक बात है, धन क्या होता है, धन भी एक संपत्ति है, पुत्र भी एक संपत्ति है, तो राय विराय है, धन नाम में पड़ा हुआ है, वैसे तो इनकी व्याख्या देखें, परिहर्तव्यम ही नो उपसर्तव्यम, इसको हटाना चाहिए, इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, किसको, जो अन्य जात है, अरणस्य रेकण, जो अरणस्य अन्यस्य जो रेकण जो संतान है जो धन है इसको हटाना चाहिए, मतलब अपनी संतान की कामना करनी चाहिए। वैसे तो अरण्य का नाम उदक नाम में ही है, किंतु यहाँ तो अन्य अर्थ दिया ना, अन्य जातम, वही यास्काचार्य हैं ये तो व्याकरण को देखते नहीं है, तो अर्थ की नित्य परीक्षा करते हैं कहाँ घट रहा है ना, हाँ अपारणो भवति, तो अपारण का क्या अर्थ है, इसका तो एक अर्थ है अपगत ऋणो भी है कि उसके प्रति कोई ऋण नहीं होता, माता पिता के जिसने पैदा किया है वो संतान के ऊपर तो ऋण है, और जो गोद लिया उसके ऊपर ऋण थोड़ी है। अगर इसको ऐसे करें अवगत ऋण अपारण भवती, अर्थात उस माता पिता हमारे ऊपर तीन ऋण होते हैं, एक पितृ ऋण भी होता है, तो वो तो जिसने पैदा किया है उसके ऊपर है, उस हमारे प्रति तो नहीं ना जो गोद ले रहा है, तो वो भी है। वही तो वही है ना कि उसका माता पिता का कोई ऋण उसके ऊपर नहीं होता है, अर्थात माता पिता ने वो पैदा नहीं किया, एक तो ये बात, पैदा किया तो ऋण है ना, ऋण तो तभी है जब पैदा किया है, तो बच्चा भी उसको स्वीकार नहीं करता कि मेरे ऊपर कोई माता पिता का ऋण है क्योंकि पैदा नहीं किया। नहीं रहा, और उसके प्रति तो है जिसने पैदा किया था, उसने वो इधर दे दिया तो वहां भी नहीं रहा, क्योंकि उसको पालते बड़ा करते तभी तो ऋण होता, तो दोनों जगह ऋण ऋण ऋणहीन हो गया वो। तो इतना तो रहेगा ही, यहाँ तो मना कर रहे हैं, आपत्ति काल में तो नियम है सब जगह, मनु जी ने निकाले हैं। वेद में तो सीधा नहीं ना निकालना पड़ता है, वेद में तो हमेशा औरस पुत्र की कल्पना है। अब ये पूरा पाद हो जाने दीजिए, इसमें सारी बातें आ रही हैं, कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। रेकने इति धन नाम है, रिच्यते प्रियते, क्योंकि रेकने को रेकने क्यों कहते हैं, रिच्यते प्रियते, मरने के बाद यही रह जाता है, कोई लेके जाता है क्या, इसलिए दान कर देना चाहिए है ना, क्योंकि ईश्वर का बैंक में जमा हो जाएगा ना, तो अगले जन्म में मिल जाएगा, क्यों विक्रम जी महाराज, और आगे चलो। नित्यस्य रायः पतयः श्यामे, हम नित्य ही धन के स्वामी बने, किस धन के स्वामी बने, पितृस्य धनस्य, जो पितृय धन है, वो पितृय धन क्या है, हाँ पैतृक, जो पिता से सीधा प्राप्त हुआ है। न शेषो अग्ने अन्य जातम अस्ति, अन्य जातम हे अग्ने शेष न अस्ति, हमारा संतान नहीं है, शेष इति अपत्य नाम में पड़ा हुआ है। शिष्यते प्रियतः, मरने के बाद वही बचता व्यक्ति मर गया तो बचा कौन, संतान ही बची, धन मरने के बाद ही रह जाता है, और व्यक्ति के मरने के बाद संतान भी यही रह जाती है, वही बचती है, कुछ नहीं बचता। अचेतय मानस्य तत्प्रमत्तस्य भवति, और जो व्यक्ति कहता है ना कि नहीं भाई हमें तो संतान उन्तान नहीं चाहिए, दूसरे की गोद ले लेंगे, बहुत जनसंख्या बढ़ी हुई है, तो परमादि व्यक्ति ऐसा कहता है। मान पथो विदु दुषा इति, मा मत न असमान पथ है मार्ग से, विदु दुषा अर्थात दूरम कुरुत, उससे हमारे उस मार्ग से हमें दूर ना करो, यदि हम गृहस्थी हैं तो हमें संतान होनी ही चाहिए। तस्य उत्तरा भूय से निर्वचना है, इसी विषय को कहने के लिए दूसरी ऋचा जो है और विस्तार को करेगी इसी विषय को। न ही गर्भाय अरण सुसेवो अन्य उदरियो मनसा मंतवा, ये ऋचा थोड़ी और कठोर कह रही है। अधा चिदोक पुनरित्सेति आनो वाजी अभिषाढ़ेतु नव्य, न ही गर्भाय, गर्भाय नाम है, कौन से लकार का रूप है, भस छंद से, हाँ ग्रह धातु है, गृह ग्रहण, हाँ न ही गर्भाय, न गृहितव्य, अर्ण अर्ण नाम है संतान, अन्य से उत्पन्न जो संतान है, सुसेव यदि वो अच्छी अच्छाइयों से युक्त है तो भी, अन्य उदरियो मनसा मंतवयु, अन्य उदरीय अन्य उदरो यस्य, जो अन्य के पेट में पैदा हुआ है मतलब दूसरी माता से हुआ है, मनसा मंतवयु उसको मन से भी नहीं मानना चाहिए, ये वेद ये नहीं सिखा रहा कि नहीं मानना चाहिए, आप ध्यान देने की बात है। जैसे महर्षि दयानंद ने तिलक लगाने का निषेध नहीं किया, तिलक लगा के स्वर्ग में जा रहे थे कि तिलक लगाने से चले जाएंगे, तो उन्होंने इतना कहा कि सारा मुंह काला कर लो तो उससे भी ऊपर चले जाओगे कहीं। तो उनका तात्पर्य समझना चाहिए कि तिलक से स्वर्ग मान रहे थे, तो उसकी निंदा है कि तिलक से स्वर्ग नहीं होता। तो ऐसे ही यहाँ भी है कि ये नहीं समझना चाहिए कि वेद ने कठोरता ऐसी कह दी कि भाई उसको मन से भी ना माने। अगर आप ऐसा स्वीकार करेंगे तो अपनी संतान नहीं चाहेंगे, फिर तो अपनी संतान चाहिए। अधा और क्या हानि होती है इससे, अधा चिद ओक पुनर एतिस है, पुनर इत स एति और अधा चित अथ अपि स ओक पुनर एति। ओक कहते हैं घर नाम में, घर में वो अपने घर में चला जाता है, वहां से भी जुड़ा रहता है, इधर की बातें वहां लगाता रहता है, इधर की बातें यहाँ लगाते रहता है, तो ना तो इधर का रहता ना उधर का रहता है, ऐसा प्राय होता है। आनो आनो वाजी, और हमारे को कैसी संतान होनी चाहिए ध्यान देने की बात है, वो बता रहे हैं। आ न असमान आना चाहिए हमारी ओर, वाजी वाजी कहते हैं बहुत बलवान, बल नाम में पड़ा हुआ है वाज। अभिषाण अभिषहमान सपतनान, शत्रुओं को नष्ट करने वाली हमारी ओर संतान होनी चाहिए ये, क्योंकि अपत्य नाम की चर्चा चल रही, तो अपत्य की पहचान बता रहे हैं कि असली अपत्य कौन सा है। न ही गृहतव्य और न सुक्तमो अपि, अच्छी प्रकार सुख देने वाली ऐसी संतान को भी नहीं ग्रहण करना चाहिए जो दूसरे की है। अन्य उदरियो मनसापि न मंतव्य, दूसरे से पैदा हुई संतान को मन से स्वीकार नहीं करना चाहिए कि हम इसको अपनी संतान बना लेंगे। ममयम पुत्र इति अध स ओक पुनरेव तद इति, वह अपने उसी घर में चला जाता है जहाँ से पैदा हुआ था। यत आगतो भवति ओक इति निवास नाम उच्यते, कितने नाम है घर के, किसने किसने याद किए, किसने याद किए, जयदेव जी आपने तो पहले भी निघंटू याद किया एक बार, विंशति होंगे ना, चतुर्विंशति है। पहला शब्द क्या है, तो वो क्या पढ़ा उसमें, साहित्य में प्रयोग होता है वो क्या, नहीं घर नाम में नहीं है, तो परंपरा से प्राप्त है फिर। घर नाम में ये वचे से ओके बनाया हुआ, वैसे वची परिभाषा से वचन निवासे से भी हो जाएगा, संप्रसारण करके ओके बनी जाता है, तो उसकी सब लोग कामना करते हैं, घर की तो सब कामना करते हैं ना। वसंती कामनाम कुर्वंती यत्र स ओक निवास है। एतु नो वाजी वेजनवान, हमारे को कैसी संतान मिले अपनी, वेजनवान बहुत अधिक बल से युक्त। अब आजकल कैसी संतान होती है, पैदा होती रोगी हो जाती हैं, पैदा ये ठीक कह रहे, पैदा ही रोगी हो रहे हैं, और बेचारे कहाँ वेजनवान होंगे, क्योंकि माता पिता को पता ही नहीं क्या खाना, कैसे जीना, कैसे रहना, उससे पहले क्या स्थिति करनी है, तो पैदा ही रोगी हो रहे हैं वो बेचारे, जीवन भर ढोते रहते हैं उनको रोगों को। तो ऐसी संतान होनी चाहिए, वेजरी कंपनी है उससे वेजनवान बन जाएगा, वेजन बन के फिर वेजनवान हो जाएगा। हाँ तो प्रत्यय हो ही गया वो तो। अभिषहमाण सपतनान, अभिषाढ़ का अर्थ किया इन्होंने, अभिषहमाण सपतनान शत्रुओं को नष्ट करता हुआ। नव जाता है सेव पुत्र, हमारा तो नया नया पैदा हो अभी, मतलब ये नहीं कि दूसरे का दो चार महीने का या 15 साल का गोद ले लिए, नई संतान होनी चाहिए। हाँ निश्चय अर्थ भी कर सकते हैं, पाद गिन लो, अब तो आपको सिखा रखा ना है, पाद गिन लो अब, कौन सा छंद है, आदि गिन लो और कल्पना कर लो। अब कुछ लोग इस ऋचा को जो आगे आने वाली है इसको नहीं, वो तो बात पूरी हो गई। अभी तक दो बातें हमें पता लगी हमारी वैदिक परंपरा में कि एक तो गोद लेने की ज्यादा महत्ता नहीं, आपत्ति काल ही है, मतलब पहले अपनी संतान की कल्पना करें इस योग्य बने। अब दूसरी बात चल रही है कि अभी पुत्र तो है और पुत्री भी हैं, किंतु धन बांटनी है, पिता की संपत्ति है, वो दोनों में बांटे या एक में बांटे, क्या करें, ये एक नियम वेद में बताना। अथ एनाम दुहितृदायाद्य उदाहरन्ति, एनाम अग्रे यस्य विषय चर्चा क्रियते, दुहित्री जो कन्या है उसका जो दाय भाग है उसके लिए उसकी उदाहरण देते हैं कि उसको देना चाहिए। किंतु कुछ आचार्य इस ऋचा को कहते हैं पुत्र दायाद्य इति, के कुछ आचार्य कहते हैं कि नहीं, ये कन्या के लिए ऋचा नहीं है, पुत्र के लिए। तो अब आगे बता रहे हैं, शाशद वहनी दुहितुर नप्त्यंग, नप्त्यम है, नप्त्यंग हो गया, नप्तम गात विद्वान ऋतस्य दीदितिम सपर्यन, पिता यत्र दुहितुर सेकम रिंजन संसग्म्येन मनसा दधन्वे। हाँ नप्त्यम, हाँ मकार को गकार हो गया ना, परस्वरण हो गया, नहीं नप्त्यम है, नप्त्री नहीं है, नप्तम है, नाति जिसको बोलते हैं, और गात है आगे, गात, गात नाम है प्राप, प्रापनोत, शासद, शासद नाम है शास्ति, प्रशास्ति, शास्ति थी शासत, कौन है वो, वहनी है, वहनी नाम है जो बढ़ा हुआ भी है, तो वो कौन है, नाना जी, वहनी का अर्थ यहाँ क्या है, नाना जी है, हाँ, और ना मतलब अभी वो क्या करता है कि उसको एक ही पुत्री है, पुत्र नहीं है, तो वो दामाद से ये कहता है कि देखो भाई मेरी पुत्री तो वहां तो जाएगी नहीं, क्योंकि आपके तो और भी भाई हैं आपके माता पिता के लिए, अगर मैं इसको भेज दूं तो यहाँ कैसे चलेगा, तो इसलिए जो आपकी जो संतान होगी, मतलब मेरी जो क्या कहेंगे नाती जो होगा, सारी संपत्ति उसके नाम होगी, इस मंत्र में इस बात को बता रहे हैं। पहले उससे वो प्रतिज्ञा करता है, छलका पट नहीं कर रहा, पहले ही कह रहा है कि भाई ऐसा आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके तो नमस्ते आचार्य स्वामी। तो दुहितुर नप्त्यम, जो दुहितु है अपनी जो कन्या है उसकी जो संतान है उसको गात, गात नाम है प्राप्नोत, कि मैं उसको ही रखूंगा, वही मेरी पीढ़ी को आगे चलाएगा, नाम भी मैं ही दूंगा उसको अपना, ये भी होता है, जो गोत्र है ना वो उसी का मिलेगा, फिर लड़की का गोत्री रहेगा वो आगे, मतलब पिता का गोत्र चलता रहेगा। विद्वान जानन ऋतस्य दीदी, दीदी तिम, ऋतस्य नाम है वैसे तो उदक, उदक है, किंतु ऋत का नाम यज्ञ नाम में पढ़ा हुआ है, आपको याद हो किसी को यज्ञ के जो नाम है ना उसमें ऋत शब्द भी पढ़ा हुआ, तो जो आगे संतान उत्पत्ति रूपी जो यज्ञ होगा वो भी एक यज्ञ है, तो उसके दीदितिम, दीदितिम नाम है विधानम, उसका जो विधान है कि उसका विधान क्या है कि भाई मेरे आगे पुत्र नहीं है, तो ये जो संतान होगी ये आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि ये आप हमारे यहीं रहेंगे और ये ही मेरी सारी आगे पीढ़ी को चलाएगी। सपर्यन नाम है पूजियन, पूजी कर, सरपति नाम है पूजी कर्मा, पूजा कर्मा है। पिता यत्र दुहितु, पिता जो है वो संतान जो उससे बात कर रहा है दामाद होने वाले से, यत्र दुहितु, दुहितु मतलब कन्या के सेकम रिंजन, सेकम नाम है संतान उत्पत्ति समर्थ है या दामाद जिसको बोलते हैं वो है जामाता, उसको रिंजन प्राप्नोति, प्राप्नुवन संसग्मेन, संगमेन मनसा दधन्वे धारयति, उसको अच्छी प्रकार मन से धारण कराता है, खुद भी धारण करता है कि भाई देखो ये समस्या है, आपको मैं अपनी पुत्री का विवाह तब करूंगा यदि आप इन बातों को ध्यान देंगे तो, और क्योंकि उसी से बात करा जिसके और भी पुत्र हैं, जिसके और भाई हैं, कि आपका कुल तो वहां चलता रहेगा और हमारा कुल यहाँ चलता रहेगा। प्रशास्ति वोढ़ा संतान कर्मणे, प्रशास्ति शासनम करोति वोढ़ा जो नाना जी है संतान कर्म ने, संतान रूपी कर्म में दुहितु पुत्र भावम, कि जो दुहिता का पुत्र होगा वही मेरा पुत्र होगा। जो संतान की जो क्रिया होगी ना आगे, उससे जो कराने वाला है दामाद जो है बनेगा, उसको पहले ही समझा रहा है। संतान कर्मणे नाम है, जो संतान के आगे जो भी कर्म होते हैं, अग्नि धान करेगा मरने के बाद में, जो संपत्ति मिलेगी या जो गर्भाधान होगा। हाँ, पिंडदान भी होता है, पिंडदान भी होता है, वो यज्ञ में भी एक पिंड पितृ यज्ञ भी है शतपथ ब्राह्मण में। वो ऐसा नहीं पौराणिकों की तरह, उसमें मतलब पिताजी कि जो वर्षी आ गई है वो आ गया है, हवन हो गया है, तो कुछ ब्राह्मणों को बैठा के भाई वो अच्छे काम किए तो मनाएगा, मनाएगा कि भाई जैसे महर्षि दयानंद का ऋषि मेला मनाते हैं ना हर साल, तो ऐसे ऐसे वही पिंड पितृ यज्ञ यही है। वो पिंड मतलब पिंडी कहते हैं भोजन को, चावलों को ऐसे घुमा के उसमें मीठा मिला के जो रख देते हैं उसका नाम पिंडी है, और पितृअर्थम पिंडी पितृपिंडी, हाँ तो ब्राह्मणों को खिलाता है उसको। ये नहीं कि हमारे वो पिता के खाता है, ऐसा सतपद ब्राह्मण का कहीं भी तात्पर्य नहीं है, पर यज्ञ करने का जरूर विधान
है।
भाई ऋषि मेला हम मना रहे हैं, नहीं मना रहे हैं, ऋषि दयानंद का निर्वाण परम मनाते नहीं मनाते, जन्म दिवस मनाते नहीं मनाते, ऐसे ही है, उसी का नाम पितरी है। जीवित का भी होता है, जब पिता का जिस दिन जन्म दिवस आदि होता है, कोई अच्छा कार्य होता है, संतान की नौकरी लगी तो उस दिन उनका पिंड पितृ यज्ञ होगा, विद्वान बन गया घर से स्नातक आ रहा है तो होगा, तो जीवित का भी होता है, और स्मृति के रूप में पूर्वजों की मनाते तो देखो है, परंपरा तो वेद की है। हाँ तो मना नहीं रहे, ऋषि मेला बनता है हर साल। और आगे चलो, अब ये दुहितु पुत्र भावम और दुहिता कस्मात, अभी देखो उस दुहितु शब्द में भी ज्ञान है, व्हाट इज डॉटर, डॉटर इज डॉटर, अंग्रेजी वाले बता ही नहीं सकते, व्हाट इज द मीनिंग इज डॉटर ऑफ डॉटर, डॉटर इज डॉटर, उससे आगे वो कुछ नहीं कह सकते। और वैसे तो ये पूज्याचार्य सत्यानंद जी ने एक बार बताया था कि एक शब्द कैसे पहुंचा, कि दुहितर शब्द था, अरबी में जाके दुखतर हो गया, अरबी में जो कन्या का नाम है ना वो दुखतर है, हाँ, और वो दुखतर बिगड़ते बिगड़ते डॉटर हो गया, लग भी रहा है बिल्कुल सीधा वही अर्थ लग रहा है। तो कन्या को दुहिता क्यों कहते हैं, पुत्री को पुत्री, दूरे हिता, दुर्हिता, दुर्हिता है, उसका हित करना कठिन है, भाई सास ससुर कैसे मिलेंगे, कैसा परिवार मिलेगा, पति कैसा श्रेष्ठ मिलेगा या नालायक मिलेगा, तो उसका हित करना कठिन है। देखो निर्वचन पूरा घट रहा है, होता ना आज भी ऐसा हो रहा है। और दूरे हिता, पड़ोस में भी वहां करना चाहिए, कम से कम दो चार प्रांत छोड़ के करे, उत्तर से दक्षिण में जाए। अब यहाँ से बेंगलोर विवाह किया है अजमेर से, तो आने जाने में सोचेगी नहीं, तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ यहाँ के बैठ जाएगी रूस के, है ना, और वो फिर आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, इसीलिए उसका हित क्या है, दूर ही था, या तो विदेश में करो और या फिर देश में भी करो तो दूर करो। पहले होते थे देश विदेश में विवाह, है गोत्र में तो दूसरे में है ही वो तो परंपरा, वो तो हाँ इससे भी निकल जाएगा, वो तो धर्मशास्त्र सारी चीजें मान ही रहे हैं। और स्वामी जी ने भी ठीक बात कही है कि भाई दूर हिता दूसरे कुल में करे, मतलब अपने गोत्र को वो भी करे, वो भी निकलता ही है। और दोग्धेरवा, ये बड़ा विशेष है, वो आजीवन माता पिता को दूहती रहती है, जैसे आई कभी कपड़े ले गई, कभी बर्तन ले गई, और कभी छूचक भरना, कभी क्या क्या होता था गांव में भूल ही गए, कभी भात भरना, कभी ये करना, कभी वो करना, है ना, तो वो चलता ही आजीवन चलता है। संतान का विवाह रहा तो भी जाएगा, संतान कोई पैदा होगी तो भी घर वालों से कुछ ना कुछ जाएगा, है ना, तो दोग्धेरवा तो पूरा घटा, पूरे जीवन उनको माता पिता से दूती रहती है कुछ ना कुछ, इसलिए उसको क्या कहते हैं। अब इतना भारी विज्ञान कहाँ मिलेगा, मतलब शब्द का अर्थ घट रहा नहीं घट रहा, आज भी घट रहा है, पहले भी घट रहा था। और आगे देखें, नपतारम उपागमत, गात का अर्थ क्या किया इन्होंने, उपागत, और नप्तम क्या क्या करती है, नप्तारम। दोहित्रम पौत्रम, और वो दोहित्र में क्या मानेगा उसको अपना, वो पौत्र मानेगा। ये ध्यान देने की बात है ना, पुत्र भाव मतलब उसको अपना पौत्र मानेगा, और कन्या को क्या मानेगा अपना पुत्र मानेगा, पुत्र मानेगा फिर तभी तो पुत्र बनेगा। क्या कह रहे स्वामी? हाँ दोहित्रम। अब ये देखो ना हमारे यहाँ क्या क्या सामाजिक नियम है ना, वेद में ये सारी बातें बताई हुई। विद्वान प्रजनन यज्ञस्य, विद्वान नाम है जानन, विद्वान का अर्थ हमेशा ध्यान देने की बात है, विद्वान का अर्थ विद्वान नहीं होता, व्यक्ति को नहीं कहता विद्वान। जैसे किसी का जयदेव विद्वान, ऐसा विद्वान का मतलब पदार्थ को नहीं कहता, विद्वान का अर्थ है जानन। कैसे बना विद्वान शब्द? क्षत्रिय प्रत्यय किस अर्थ में होता है? गच्छन्तम देवदत्तम पश्य, अभी जान रहा है जाना, उसके बाद क्या हो जाएगा अनुचाना, श्रोत्रिय, ये नाम हो जाते हैं फिर विद्वान के लिए। बाकी विद्वान का अर्थ जानन, अभी जान ही रहा है। इसलिए लोग कहते हैं ना विद्वान सो वही देवा, शतपथ ब्राह्मण का कि भाई देवता क्या है ना विद्वान है, विद्वान सो वही देवा का अर्थ जानन वही देवा, देवता आपको जान रहे हैं, गलत काम नहीं करना। विद्वान सो वही देवा का अर्थ जानंत वही देवा, देवता आपको जान रहे हैं आपके अंदर बैठ के कहीं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा पाप भावना से बच के रहना चाहिए, क्योंकि व्याकरण इस बात को कहता है। इसलिए किण्वंतो विश्वमार्यम का अर्थ है किण्वंत है करते हुए, विश्वमार्यम विश्व को आर्य करते हुए। पूरे मंत्र में क्रिया नहीं है, पहला मंत्र है ऐसा। इंद्रम वर्धन्ते अपतुर है, कहाँ क्रिया है? किण्वंते विश्वम आर्यम, कहाँ क्रिया है? अब घनंत रावण, क्रिया कहाँ? निष्क्रिय मंत्र है पर क्रिया यही दे रहा है सारी। स्वामी जी महाराज जी आगे बताएंगे, वैसे देवत कांड में अगर क्रिया नहीं है कहीं तो क्रिया पहले मंत्र की देखो या बाद वाले की देखो, अगर वो घट रही है तो घटाओ, नहीं तो अध्यार करो, मंत्र में क्रिया ही नहीं है, ये तो क्रिया कहाँ है? तो सुबंध है गच्छन्तं, तो क्रिया नहीं है, किण्वंत सुबंध है, तो उसमें अभ्यर्षंती क्रिया है अगले मंत्र में, अभ्यर्षंती क्रिया है। तो किण्वंत है विश्वम आर्यम, अपने आप को आर्य करते हुए और संसार को आर्य करते हुए। इंद्रम वर्धन्त है ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए। अपतुर है कर्मशील मनुष्य है, इंद्रम वर्धन्त है ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए। किण्वंत है विश्वम आर्यम, अपने आप को और संसार को आर्य करते हुए। अपघनंत है अरावण, दुष्टों को दंड देते हुए या दुष्ट वृत्तियों को काम करो दादी को क्या करें ये नहीं बताया मंत्र में। अभ्यर्षन्ति आगे क्या है मंत्र? हाँ देखो अभ्यर्षन्ति क्रिया ले लेंगे अब, अभ्यर्षन्ति बभ्रव अभ्यर्षन्ति, तो बभ्रव तो को तो हटा देंगे, अभ्यर्षन्ति ले लेंगे। तो अभ्यर्षन्ति, अभ्यर्षन्ति का नाम है क्या है? अभित रिद्नुवन्ति, मतलब सिद्धि को प्राप्त करते हैं एक प्रकार से, अभ्यर्षन्ति का अर्थ होता है। तो आप ऐसा करते होंगे तो आपका जो लक्ष्य है उसको पूर्ति करते चलेंगे, ये इसको मंत्र इस बात को कहते हैं। किंतु अब क्योंकि ये रूढ़ हो गया है किण्वंतो विश्वमार्यम, संसार को आर्य बनाओ, इसलिए मैं भी इसके कक्षा में तो मैं बता रहा हूँ पर इसके मैं कहीं इसका अर्थ दूसरी तरह वैसे नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा नारा बन गया तो क्यों उसमें करें। हाँ ऐसा अभ्यर्षंती नाम है प्राप्नुवंती, किं कम प्राप्नुवंती, लक्ष्यम प्राप्नुवंती, तत्त्वम प्राप्नुवंती। तो ऐसे बहुत से मंत्र आपको मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है इसका जो देवता है ना पूरे सूक्त का, नौवे मंडल का पवमान सोम है, कौन ऐसा कर पाएगा ये एक विशेष बात है। इसका ऋषि कौन सा है? काश्यप है। एक तो कश्यप से संबंध रखना पड़ेगा है ना, काश्यप है, कश्यप जो ऋषि है उससे संबंध रखना पड़ेगा, क्योंकि कश्यप से संबंधित काश्यप है वो तो ऋषि हो गया, मतलब हमारे अंदर वो योग्यता होगी तब हम ऐसा कर पाएंगे। सीधी बात है, ऋषि का अर्थ है कि उस योग्यता को प्राप्त व्यक्ति, उस योग्यता को प्राप्त पदार्थ, तो उस योग्यता को प्राप्त काश्यप ने किया था, अगर हम अपने अंदर काश्यप का आधान कर लें तो हम संसार को आर्य बना पाएंगे। ये सारा ऋषि का अर्थ से अभी ज्यादा चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि देवत कांड में सारा आने वाला है, वहां बिल्कुल धीरे धीरे एक एक चीज खोल के बोर्ड पे चलेंगे जितना संभव होगा। और आगे चले, रेत सोवा, रेत से नाम है शुक्र, अंगात अंगात संभूतस्य, संतान कैसे पैदा होती है, जो हमारे शरीर में शुक्र या आर्तव है ना, कोई एक जगह नहीं रहता है, पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। तो अंगात अंगात संभूतस्य, हृदयात अधिजातस्य, हृदय से पैदा किया गया है, मातृ प्रतिरितस्य, और माता पे पहुंचा हुआ है, मतलब अधिकतर संतान में माता के लक्षण अधिकतर आते हैं। वैसे आयुर्वेद ये भी मानता है कि कौन से अंग पिता से आएंगे और कौन से माता से आएंगे, ये एक बात। विधानम पूजयन, इसका क्या अर्थ किया है, सपर्यन का अर्थ किया है पूजयन, कि इस विधान है भाई, शास्त्र ने कहा है, दामाद को समझा रहा है होने वाले को नाना जी, कि ऐसे ऐसे शास्त्र ने कहा है, तो इस शास्त्र के विधान को आपको मानना पड़ेगा। अविशेषेण मिथुना पुत्रा दायदे इति, किंतु एक आचार्य का मत है कि अविशेषेण सामान्य रूप से मिथुना, मिथुना मतलब दोनों हो गए पुत्र भी और पुत्री भी, दायादा, देखो यहाँ ध्यान देने की बात है, लोग कहते हैं ना वेद में पुत्र की कामना है, पुत्री की है ही नहीं, आक्षेप करते हैं लोग वेद में, तो पुत्र का अर्थ दोनों लिया है, पुत्र भी और पुत्र का अर्थ है संतान मात्र, दायादा तो दाय भाग के अधिकारी, मतलब कन्या को भी हिस्सा बांट देना चाहिए है? तो यास्काचार्य ने वेद से निकाला है ना, व्यासकाचार्य ने तो वेद से नहीं, वेद में है तभी तो निकाला, नहीं तो ऐसे कैसे निकालते हो, जो चीज होती नहीं, अभाव से भाव की उत्पत्ति थोड़ी करेंगे। पर मंत्र भी इस बात को कह रहा है ना कि सासद वैन्नी पिता यत्र, और आगे भी आने वाला है इस विषय में, तद एतद ऋक् श्लोकाभ्याम उक्तम, किंतु ये ऋचा में भी कहा है और श्लोक में भी कहा है, ये ऋचा को यहाँ शत ब्राह्मण में तो है ये, किंतु कहाँ का है पता नहीं लगता वहां, तो इसलिए ऋचा को इन्होंने कह दिया इस रूप में, बाकी ऋचा नहीं है। अंगात अंगात संभव सी, प्रत्येक शरीर के हिस्से से पैदा होता है, हृदयात अधिजाय से, और हृदय से पैदा हुई है संतान, आत्मा वही पुत्र नामासी, क्योंकि हृदय से कैसे पैदा हुई है, पहले आयुर्वेद की भाषा में ऋषियों के अनुसार पहले विवाह के बाद 40 दिन जो है पंचकर्म किया जाता है, उनका शुद्धि की जाती है, उसके बाद में औषधियों का सेवन कराया जाता है, उसके बाद में संतान पैदा का नियम है, तो वो पूरी तैयारी हृदय उसी बात को कह रहा है। आत्मा वही पुत्र नामासी, आत्मा ही मेरे पुत्र के रूप में पैदा हो गई है, ऐसा कह रहे हैं। स जीव सरदा सतम, आशीर्वाद दे रहे हैं कि वह 100 साल कम से कम जिए, ये 100 साल कम से कम जीने का विधान है, किंतु आजकल दिखाई नहीं देते, पहले ही चले जाते हैं लगभग। नहीं, अगर कुछ नियमों का पालन करे, वेद की भाषा, ये ध्यान देने की बात है कि वेद आदि सृष्टि के लिए नहीं था, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक के लिए वेद, मतलब तब तक भी व्यक्ति 400 साल जी सकता है नियमों का पालन करके। भूयसी क्या है वो देखो, मंत्र बोल दिया उन्होंने, कम से कम है, मतलब आज की सामान्य वैज्ञानिकों के अनुसार 60 साल है, तो हमारी वेद की कम से कम नहीं 100 साल है, कम से कम 100 साल है, अधिकतम 400 साल है। नहीं देखो भाई, रसायनों का विधान है और कुछ नियमों का पालन करे तो रोग आता नहीं, रोग व्यक्ति को बूढ़ा करता है, सीधी बात। और तत्व को जान लिया, आप तत्व का शरीर में विकास कर लिया, तो बुढ़ापा नहीं आता फिर। अविशेषेण पुत्राणाम दायो भवति धर्मतः, मनु जी कह रहे हैं हाँ, कि अविशेषेण पुत्राणाम दायो भवति धर्मतः, ये धर्म शास्त्र इस बात को मानता है वेद कि अविशेषेण पुत्राणाम, देखो ध्यान देने की बात है, पुत्राणाम से कन्या भी लिया गया है, पुत्री भी लिया गया है, इसको प्रमाण के रूप में आप दे सकते हैं। हाँ, पुत्राणाम नाम है पुत्रस्य पुत्री च पुत्रा तेषां पुत्राणाम, दायो भवति धर्मतरो, तो पाणिनि ने भी सूत्र बनाया हुआ है ना, स्वरूपाणाम अलग घटेगा, मिथुना नाम विसर्गादौ मनु स्वयंभो अब्रवीत। और सर्ग के आदि में मतलब सृष्टि के आदि में जब मनु पैदा हुए थे, उन्होंने धर्मशास्त्र बनाया था, समाज की व्यवस्था कही थी, तो पहला नियम बना दिया था कि दाय भाग दोनों को मिलेगा। मनु एक उपाधि है, जैसे प्रधानमंत्री क्या है, 10 साल तक मनमोहन जी रहे, अब मोदी जी हैं, 10 साल बाद कोई और हो जाएगा। इसी सृष्टि के आदि में जिसमें लिखा गई है पुस्तक, मनु जी ने जो मनुस्मृति लिखी, पिछली सृष्टि की तो बची नहीं थी। वैसे स्वामी जी महाराज इसमें जो आप ठीक कह रहे हैं, वैसे शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ये जो अभी अपना एक मनवंतर के बाद जो है ना जल प्लावन होता है, ये ग्रंथ उसके बाद के हैं सारे, हाँ खंड प्रलय उसमें पूरी कथा आती है, मनुस्मृति में और सूर्य सिद्धांत में भी है। ये कब होती है, एक मनवंतर के बीच में। हाँ तो अब आप ये समझ लो कि कितने वर्ष हो गया, अगर इसको अभी जो आने वाली है वो 18,67,886,000 वर्ष के बाद आएगी, जल प्लावन होता है। ये मैंने गणित निकाला इसका ज्योतिष से, 18,67,886,000 वर्ष बाद अभी जल प्लावन होगा, क्योंकि अभी इतने हमारे जो मनु जी चल रहे हैं अभी, ये इनके इतना समय भी बचा है, तो तभी होगा। सारे तो नहीं मनेंगे, वो मनु जी नौका लेके हिमालय पे चढ़ जाएंगे। शतपथ ब्राह्मण में कहता है, मंत्र में भी ये कुछ बात है, मनु जी होते हैं ना। ये देखिए काल का प्रवाह है, अभी लोग जो है ना भारत में क्या विदेश में भी लोग पुरानी चीजों की ओर लौट रहे हैं। आप 10-20 साल और रुकी, लोग पुरानी चीजों की ओर लौटेंगे, धोती भी पहने यहाँ सारे लोग मिलेंगे। अब कुछ दिन में आप देखना, विदेशों में तो हो गया है, किस दिन में कुछ वीडियो आप सब लोगों को दिखाऊंगा कि वहाँ महिलाएं साड़ी, छोटे छोटे बच्चे धोती और चोटी इतनी मोटी मोटी, रोडों पे हरे कृष्णा गाते हुए घूम रहे हैं छोटे छोटे। आप वेद का ज्ञान नहीं दे रहे तो इस्कोन वाले कुछ तो भारतीय परंपरा ला रहे हैं वहाँ, चोटी रखवाना भी विदेश में जाके नंगे पैर परिक्रमा लगवा रहे हैं। बाकी काम हम कर लेंगे।
उसी की एक और वीडियो दिखा दूंगा जी।
कोई बात नहीं, आप ठीक कर लेना ना, ये जितने भी संप्रदाय वाले लगे हुए हैं ना, ये बहुत से कामों से तो बचा रखे। देखो मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते, कितने दोषों से बचा रहे हैं, और चोटी रख रहे हैं, धोती विदेश में धोती पहुंचा दी और यहाँ धोती बची नहीं। हाँ चलो आगे, यहाँ मैंने बुलाया हुआ कुछ लोग आएंगे, दो तीन यहाँ आपको मिला देंगे, कुछ दिनों में आएंगे, अपने मित्र हैं वो। हाँ क्या कह रहे हैं, पाठ कर लें, पाठ पूरा कराना नहीं रह जाएगा, क्या कह रहे हैं जल्दी बोलो। जल प्लावन की चर्चा आगे कर लेंगे, अभी तो इसकी कर लें। ये हो गया जी, समझ में आ गया। मिथुना नाम नाम है, पुत्र और पुत्री नाम। हाँ मिथुन मतलब जोड़े को कहते हैं। तो ये हो गया, अब आगे देखिए। न दुहितर इत्येक के कुछ आचार्य कहते हैं भाई कन्या को नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, धन संपत्ति वो तो वहां जा रही है, तो जो उसके पति की जो संपत्ति है वो उसकी, क्योंकि दोनों अलग नहीं है, तो यहाँ से भी ले जाएगी बेचारा, ये तो पता नहीं है या नहीं है, और वहां से भी लेगी, इतनी संपत्ति का करेगी क्या, है ना, तो इसलिए उसी की संपत्ति रखनी चाहिए। तस्मात पुमान दायादो अदायादा स्त्री थी विज्ञायते, कि पुमान ही दाय भाग का अधिकारी है, कन्या नहीं है। तस्मात स्त्रियम जाताम प्राश्यंती, स्त्री को जाताम ध्यान देने की बात है, नहीं तो इसका उल्टा अर्थ हो जाएगा। कुछ लोग इसका गलत अर्थ करते हैं कि जाताम प्राश्यंती, पैदा होने के बाद उसको दूर कर देते हैं, ये ध्यान देने की बात है। कहना क्या चाह रहे निर्वचन, तस्माद स्त्रियम जाताम, जाताम नाम है, लिखो वाक्य, विवाह योग्याम जाताम सती, विवाह के योग्य होने पर प्राश्यंती, विवाह योग्याम, विवाह योग्या जाताम, विवाह योग्य यदा जाता, या विवाह योग्य जाता ताम, ऐसे करो, या विवाह योग्य जाता ताम, प्रास्यन्ति। हाँ नहीं, दूसरे गलत अर्थ करते हैं ना यहाँ से। विवाह या विवाह योग्य जाता ताम, विवाह योग्य जाताम परास्यन्ति, परास्यन्ति नाम है परस्मै अस्यन्ति ददति, दूसरों को उसको दे देते हैं, अर्थात उसका दूसरे के साथ में विवाह कर देते। परास्यन्ति करते हैं फेंकना नहीं है, अशु प्रेरणे हैं, प्रेरित करते हैं कि भाई अब तुम विवाह के योग्य होगी, हम तुम्हारा विवाह कर रहे हैं, तो दूसरे को दे देते हैं। न पुमान समिति, किंतु लड़के को नहीं देते हैं कि जाओ तुम घर दामाद बन जाओ, कितना भी गरीब हो वो भी नहीं छोड़ता कि यहीं रहे, है ना, तो इसीलिए पुत्र को ऐसा नहीं करते। जब उसको दूसरों को दे दिया तो उसकी जो संपत्ति है पति की वो उसकी होगी, इसलिए कन्या अधिकारिणी नहीं है, ऐसा मान रहे हैं अभी। अभी और भी आगे चलेंगे चर्चा। और स्त्री नाम दान है, स्त्रियों का क्या दिखाई देता है, दान, दान नाम है कन्यादान, ये लिख लेना कभी उल्टा अर्थ समझ लो, तो दान करता स्त्री का ही कन्यादान होता है। कोई पुरुष पुरुष कन्यादान सुना, पुरुष दान सुना है क्या, नहीं सुना, तो कन्यादान स्त्री का ही होता है। और विक्रय, इनका विक्रय भी होता है, विक्रय कर ध्यान देने की बात है। एक परंपरा है अभी भी है दक्षिण भारत में है, ये बताएंगे कि जिसके साथ में विवाह करते हैं उससे पैसा लेते हैं कुछ, मुस्लिमों में तो ये है ही, उसको नेग बोलते हैं कुछ, है ना, वो मुस्लिम तो कर ही रहे हैं, मतलब यहाँ वेद का उन्होंने कुछ तो लिया हुआ है, किंतु दक्षिण भारत में ऐसा है ना, है कि हाँ यहाँ तो नहीं है शायद, इधर हाँ यहाँ, मतलब जो दहेज है ना वो पुरुष को देनी पड़ती है, दहेज ना कह के उसको एक वृत्ति कहें, कोई कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, तो इसका विक्रय का ये अर्थ है, विक्रय का अर्थ है कि एक इतनी मेरे को मुद्रा दो, उसका पिता कहता है और हम आपका विवाह कर देते हैं, ये परंपरा है। तो विशेषण क्रय विक्रय, विशेष परिस्थिति में वो पिता पैसा लेता है, देखता नहीं है उसको, उसको नेग कुछ बोलते हैं ऐसा है कि भाई, और वो पिता भी उस पैसे को कन्या को ही दे देता है, ये भी है, ऐसा है क्या, हाँ हाँ, जो विवाह संस्कार कराने वाले उनको ज्यादा पता होगा, कराते हैं कुछ, हाँ तो देखो वो परंपरा है विवाह में, हाँ पुत्री को ही दे देता है पैसा। विशेष मतलब विशेष रूप से क्रिया किया गया कि ये इतने पैसे दो, अब वो पिता की इच्छा, वो पैसा कहाँ दे, वो तो दान हुआ ना, फिर वो पिता उसको दान दे देता है, हाँ वो पिता पैसा नहीं रखता, परंपरा ऐसी है, ऐसी है ना जी, हाँ ये दक्षिण में भी ऐसी परंपरा, वो अपने कन्या के लिए सुरक्षित कर देता कि उसका भविष्य, भविष्य में क्या हो जाए, वो इस रूप में ठीक भी है वो परंपरा, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं, तो यहाँ इसका ठीक कर लेना, नहीं तो लोग कहेंगे कि देखते हैं, वो अर्थ नहीं। और अतिसर्गा विद्यन्ते न पुंसे, और इन्हीं के जो है अतिसर्ग होते हैं, अतिसर्ग का अर्थ भी विशेष है, अतिसर्ग कर दिया जा बेटी, दो प्रकार की परंपराएं हैं कि भाई एक तो कन्या पिता की मर्जी से विवाह कर ले, ये एक वैदिक परंपरा है कि पिता अपनी कन्या के लिए योग्य वर ढूंढ ले, वो कन्या को भी पसंद आना चाहिए, ध्यान देने की बात है, जबरदस्ती का वेद में नहीं, वो कन्या को भी पसंद आना चाहिए, कर ले। एक ऐसा पिता नहीं कर पाए तो फिर वो स्वयंवर करता है, तो उसका अति, उसी का नाम ही अतिसर्ग है कि उसको छोड़ देते हैं कि भाई ये 10-12 वर है जो आपको पसंद हो, जिसके गुणधर्म सबका बायोडाटा वो पहले पढ़ी लेती है, तो उसके वरमाला डाल दे, इसका यहाँ अतिसर्ग नाम है। पुंसोपीति के कुछ लोग कहते हैं भाई इनका भी पुंस का भी जो है ना ये विक्रिय होता है और इनका भी अतिसर्ग होता है। सोना शेपे दर्शना, सोना शेप को देखने से, सोना शेप के मंत्र भी और कथा भी है, सोना शेप की कथा बाद में बता लेंगे, थोड़े पाद पूरा हो जाएगा, मैं कल देख लेंगे इसको, कथा लंबी चौड़ी है, वो पूरी घटा के दिखानी पड़ेगी, तो सोना शेप की एक कथा है वो कल बता देंगे। अभ्रातृमतिवाद इति अपरम, ये जो सारी चर्चा चल रही है ना ये इसलिए है कि जिसका कोई भाई नहीं है, एक आचार्य तीसरे और आगे वो बोले कि भाई ये चर्चा जो मंत्रों में है ना ये इस रूप में है, जिसका कोई भाई नहीं है, तो जिसका भाई नहीं है उसी को तो पिता घर पे रखेगा कन्या को, और उसी के दामाद को कहेगा कि भाई ऐसे रहे, और ये जो मेरी सारी संपत्ति और गोत्र मेरा ही रहेगा, ध्यान देने की बात है, इसमें गोत्र दामाद का नहीं चलेगा, गोत्र कन्या का ही रहेगा, और उसका संपत्ति का अधिकारी दामाद नहीं रहेगा, जो कन्या से उत्पन्न होने वाला पुत्र या पुत्री वो रहेगी, ये नियम है। और आगे चलें, इसका एक उदाहरण दे रहे हैं भ्रातृमती का, अमू अमूर यानी है अमू या ऐसे है
या।
नहीं अमू या इसका पदपाठ ऐसे है, हाँ हाँ अमू का अर्थ है ये अर्थ है ना, ये जो यंती जामय है, ये जो जामय जो चल रही है ना, सर्वा लोहित वास है, जामय को कह रहे हैं नाड़ियां, नाड़ियां जो रक्त लेके जा रही हैं, जामी का अर्थ स्त्री भी करेंगे, अभी तो शरीर में उपमा दे रहे हैं, यहाँ नाड़ियां हैं, सर्वा लोहित वास है, सारे लाल लाल कपड़े पहने हुए, तो ये इन नाड़ियों के अंदर क्या पहना हुआ है, लाल वस्त्र है, इनके अंदर खून दौड़ रहा है ना। ऐ भ्रातृव योसा, जैसे जिसका भाई नहीं है ऐसी जो बालिका है स्त्री है, तिष्ठंती हत वर्तमान, तो वो अपने पिता के घर में ही, जिसका हत वर्तमान अर्थात घर, जिसका पति का घर नष्ट हो गया, अर्थात पति के घर जाने नहीं तो नष्ट ही समझो, दर्शन है उसका, तो वो अपने घर में वहीं ठहरती है, जैसे हमारे शरीर में ये लाल नाड़ियां ठहर रही हैं। इसका आगे उत्तर दे रहे हैं, उपमा ऐसे दी है कि जो ये लाल लाल ऐसे हैं वैसे ही, जैसे ये ठहर जाती हैं, वैसे तो ये जब महिला गर्भवती हो जाती है उसका वर्णन है, उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, तो जब ऐसे ही ये घर में ठहर जाती हैं जैसे है। ऐ भ्रातृकैव योसा तिष्ठन्ति संतान कर्मणे, ऐ भ्रातृकैव योसा तिष्ठन्ति संतान कर्मणे, तो वो जिसका भाई नहीं है वो अपने पिता के घर में ही रहती है, संतान कर्म का जो है, संतान के जो भी कर्तव्य हैं उसके लिए, पिंडदान देने के लिए, हत वर्तमान है इति अभ्रातृकया अनिर्वाह औपमिका। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर वो विवाह ना करना चाहे, अगर कोई ऐसा पति ना मिले, और लड़की भी चाहे कि, लड़की की मर्जी मुख्य है, ध्यान देने की बात है कि भाई मैं चलो ऐसा कोई नहीं मिल रहा है, मेरी विवाह की भी इच्छा नहीं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें, शास्त्रीय करें, जो भी करें, तो वो फिर अपने घर में ही रहे, फिर वो विवाह भी ना करें।
की
घर जमाई की तो बात आई थी ना पिछले मंत्र में, नहीं वो तो बात है, किंतु इसमें अंत में क्या किया ना, अनिर्वाह है, निर्वाह करता विवाह, और अविद्यमान निर्वाह यस्य, अनिर्वाह है उपमी के, उपमा है मतलब सामान्य रूप से है, निश्चित रूप से, तस्य उत्तरा भूय से निर्वचना है, इसी बात को कहने के लिए अगली ऋचा बहुत अधिक विषय को कह रही है। ऐ भ्रातई पुंसे, अब आगे जो एक दक्षिण भारत में कोई परंपरा है, यास्क ने वो निकाला है, मंत्र से तो बात नहीं निकलती किंतु समझाने के लिए निकाला है, कि जिसका पति भी ना हो, जिसके बच्चे छोटे हों, पति नहीं है वो गुजर गया, सास ससुर भी इतने समर्थ नहीं है माता पिता की उसको पाल सकें, तो वो क्या करे, तो वो राजा का द्वार जाके खटखटाए कि भाई मैं, क्योंकि राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा का पालन करना, तो वो जाके अपनी सारी बातें बताए, तो वो फिर उससे मंत्री आदि सारे सवाल जवाब करते हैं, कैसे मरा, क्या है, खेती बाड़ी है या नहीं है, आज भी जो 1000 रुपये पेंशन देते हैं ना हरियाणा में, हुड्डा जी ने वो बोर्ड लगा रखे हैं, तो उसमें खूब पूछताछ होती है ना, कितनी आयु है, क्या है सारा, तो उससे वो पूछताछ करते हैं, तो उसकी यहाँ 4 उपमा इन्होंने दी हुई है, इस मंत्र में 4 उपमाएं हैं, कैसे वो देखिए। ऐ भ्रातई पुंसे एति, ऐ भ्राता इव, जिसका भाई नहीं है, उपमा किसकी होगी, भ्राता रहित कन्या जैसे, पुंसे एति, वो पुंसे का अर्थ है अपने पिता की ओर लौट आती है, मतलब वो पति के घर में नहीं जाती, पिता के घर में ही आ जाती है, एक बार गई भी तो फिर वहां आ जाएगी। प्रतीचि, प्रतीचि नाम है, हाँ लौटी हुई, कैसे लौटी, गर्तारुकी सनीय धना नाम, जैसे गर्तारुकी गर्त ने धन के लिए गई हुई के समान, जैसे वो धन लेने के लिए जाती है और वो फिर वापस धन लेके आ जाती है, ऐसे एक बार ये पिता के घर में गई, वो पति के घर में गई तो फिर वापस आ गई। सनये नाम है प्राप्त है, धना नाम सनये प्राप्त है, सनुदाने जा, वो गर्त गड्ढा है, अभी बताएंगे ना, पूरी व्याख्या हो जाने दीजिए। जाये पत्य उष्टि सुवासा, ये तीसरी उपमा है कि ये बार बार आ गया, इस पे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, महावाश में भी आ गया, पीछे भी आ गया। ऊषा हस्रय, चौथी उपमा है, ऊषा जैसे हस्ती हुई के समान, ऊषा हस्रय ऊषा, यह था ऊषा हस्ती है ना, कैसे हस्ती है, जब सूर्य निकलने से पहले आपने अंतरिक्ष को ध्यान से देखा करो, कभी अगर समय मिलता है छत पे चढ़ के, अंतरिक्ष भी हंसता है, ऐसा लगेगा जैसे प्रकाश आने से पहले अगर बादल हो तो ज्यादा हंसता है, थोड़ा सा प्रकाश जो बादलों के अंदर से पार होता है ना लालिमा, ऐसे लगता है हंस रहा है, तो ऊषा जैसे हंसती हुई। निर्णीत अपसय, निर्णीत नाम है निवार्यति अपसय, अपने रूप को खोल देती है, जब ऊषा काल होता है तभी तो अपन ऊषा का रूप खुलेगा तभी तो हमें कोई चीज दिखेगी। तो ये चार उपमाएं होगी, ये चार उपमा आप याद रखेंगे तो आगे चार उपमा नहीं बताएंगे, केवल बताएंगे उपमा हो चुकी। अभ्राता भ्रातृकाई पुंसे पितृ अभिमुखी संतान कर्मणे पिंडदानाय न पतिम, तो संतान के कर्म के लिए, कर्तव्य के लिए, पिंडदान के लिए पति के पास नहीं जाती, और एक बार गई भी तो ससुराल में फिर हमेशा के लिए यहीं आ जाती है। गर्ता रोहिणी, जैसे गर्ता रोहिणी क्या है, धन लाभ है, धन की प्राप्ति के लिए दक्षिणा आजी, दक्षिण दिशा में रहने वाली गर्त, दक्षिणा आजी, जो दक्षिण दिशा को कह रहे हैं यहाँ वैसे दक्षिणा जी, गर्त सभा स्थानु गिरनाते, गर्त क्या है, सभा का खंभा है जो गिरनाते पकड़ के रखते, तो उस खंभे के पास में वो खड़ी हो जाती है जाके, तो वहां कोई न्याय का नियम बना रखा होगा कि भाई कोई भी आए अगर आप उसको क्या होता है ना पहचान, किसको कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए राजा के पास से, तो खंभे राजा ने बनाए हुए कि भाई ये चाहिए तो यहाँ आगे खड़े हो जाए, तो ताकि राजा को पूछने ही ना पड़े किस लिए समय बर्बाद होता है, सीधा आएगी भाई इसलिए आए हुए। घंटी बजा, घंटी बजा के तो अंदर गए होंगे ना, तो कहाँ खड़े हो अंदर जाके, अब कुर्सी प्रधानमंत्री कहाँ बैठेगा, वकील कहाँ खड़े होंगे, ये कहाँ, एक व्यवस्था होती है ना, तो ये चीज चाहिए तो यहाँ खड़े हो, ये चीज चाहिए तो यहाँ खड़े हो। गर्त, गर्त तो ऐसे कटघरा, ये ठीक कह रहे हो, गर्त ही होता है वो कटघरा सभी, उसमें खड़े हो जाए, क्योंकि न्यायाधीश पूछेगा ना, राजा थोड़ी सीधी बात करेगा छोटे मोटे धन देने के लिए, पहले न्यायाधीश के पास आएंगे, न्यायाधीश पूछेगा भाई कोषाध्यक्ष जो है क्या समस्या है, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, तो वही कह रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बात है कि किसी के कोई समस्या हो अगर ना अपना काम चल पा रहा हो तो जाके राजा को पकड़े कि हमारा पालन करो, सत्य संकरो भवति, एक बात है सत्य से मिला हुआ होता है, मतलब वहां जाके झूठ नहीं बोल सकता, अगर पकड़े गए तो दंड भी मिलेगा, कि वहां सच्ची ही बात बतानी पड़ेगी, सत्य से संगर है, मिला हुआ है, वहां झूठ नहीं बोले कोई जाके, जैसे गीता पे हाथ रख के शपथ खाते हैं ना न्यायाधीश के सामने, तो समझो वैसे ही है। तम तत्र या अपुत्रा या अपति का सार होती, जो जिसका पति मर गया है, पुत्रादि भी नहीं है, पालन करने लायक छोटे हैं, तो वो क्या है ना वहां जाके खड़ी हो जाती है, ताम तत्र अक्षय आघनंती सारिकतम लगते, वहां अक्षों से उसको वाणी से पूछते हैं, हनंती नाम है जानंती तस्मी से, हना हिंसा गत्य हो धातु है, तो सा रिक्तम लभते, वो धन प्राप्त कर लेती है। अब देखो क्या परंपरा थी, कोई हमारे यहाँ गरीबी न रहे अगर राजा इस पे इस परंपरा का पालन करे तो, अब गुरुकुल नहीं चल रहा ठीक से, धन की व्यवस्था नहीं हो तो पकड़ो राजा को जाके संस्था में क्यों आचार्य जी, अब जमीन नहीं मिल रही गुरुकुल को चलाने के लिए, 100 एकड़ चाहिए तो राजा को कहो भाई गुरुकुल खोल के दे, हाँ उसके लिए कोई अलग गर्त बनाया हुआ होगा। अच्छा चलो अब आगे देखो, इनकी एक शैली देखो आप क्या कैसा कहते, अब गर्त आया था सभा का स्थान, किंतु जितने भी गर्त के वेद में अर्थ है या लोक में वो सारे करके चलते हैं। ये तो विषय मंत्र तो पूरा हो गया, किंतु आगे देखो इनका उपाय। शमशान संचयपी गर्त उच्चते, जहां व्यक्ति की, मैं तो काफी दिन से शमशान में गया नहीं, कोई गड्ढा रहता है कि जहाँ चिता जलाते हैं,
थोड़ा सा नीचे होता है ना।
हाँ तो देखो
अच्छा
गड्ढा, हाँ हाँ तो यही कह रहे हैं शमशान संचय, जहाँ व्यक्ति की
तो उठाए हुए रहते हैं, ऊपर चमक सा उठा हुआ रहता है,
तो वेद के अनुसार उसको गड्ढा बनवाओ। इसमें वैज्ञानिकता है, नीचे रहने से ना चीजें वायु वायु इधर उधर नहीं फैलती, सीधी ऊपर जाती है। हाँ हवन कुंड जैसा, ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आहुति देनी है ना जी, वो भी एक यज्ञ है, अंतिम यज्ञ है। गुरुते, इसको क्यों कहते हैं गर्त को गुरुते, गुरु उद्यम ने हमेशा प्रतीक्षा करता रहता ऊपर को उठाओ कि कोई आए लेटे और अपना लाश जड़े यहाँ तभी तो गड्ढा भी प्रतीक्षा करता है, कोई दिन काफी दिन से कोई ना आए, है ना। कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ, एक आध दिन कहीं से फोन ना आए ना, तो उनको तनाव हो जाता है कि कहीं से फोन ही नहीं आया, हम तो ऐसे ही समझो। अपगूर्णो भवति, तो ये ऊपर ऊपर को क्या होता है, लोक लोकस्य विनाशाय उद्यतो भवति, मनुष्यों को मारने के लिए। शमशानम शमशयनम, जहाँ लाशे जो है ना सोती हैं। एक व्यक्ति बोला कि भाई मुझे ऐसी जगह बताओ जहाँ पूर्ण रूप से शांति हो, मगर मैं जानता हूँ कि पूर्ण रूप से शांति तो मरने के बाद ही मिलेगी, क्योंकि जन्म हुआ तो दुख था, या फिर समाधि में मिलेगी, बाकी तो पूर्ण रूप से शांति नहीं मिल सकती। मुर्दे में ही पूर्ण रूप से शांति है, योगी में ही हो सकती है, या फिर तत्व जान ले, तत्व जान लेगा तो योगी हो ही जाएगा। गाड़ने वाले से पूछो। शरीरम शिरणाते, इस पाठ पूरा करना है। शरीरम शिरणाते, शरीर को शरीर क्यों कहते हैं भाई, शिरणाते हिनस्ति अनेनेति, हिनस्ति जानाति प्राप्नुवन्ति अनेनेति, जिससे सब कुछ जान गमन प्राप्ति करते हैं और दुष्टों को दंड भी इसी से देते हैं, कोड़े वोड़े मार के। शमनातेरवा, या फिर ये शांति करता है, और समश्रु लोम, और समश्रु क्या है, मूछ के बाल हैं। समनी श्रीतम भवती, और ये शरीर में लटके होते हैं। लोम है लुनातेरवा लियतेरवा, या तो इनको काटते रहना चाहिए इसलिए इनका नाम लोम है, या लियते, या ये चिपके रहते हैं शरीर में, दोनों अर्थ हो गए ना, जिनको काटा जाता है वो लोम है, या जो शरीर में लिंग है श्लेषण है, जो शरीर में चिपके होते हैं इसलिए इनको लोम कहते हैं। अब अंग्रेजी वाले से पूछो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेयर, हेयर इज हेयर, सारे यहाँ केश मात्र से ले रहे हैं। हाँ समश्रु लिया है ना, समश्रु तो ये लोम नहीं है ना, ये तो बाल है। अभी एक यज्ञकांड की बात आ गई कि इसमें क्या है, जिन्होंने सोमयाग देखा है उसमें एक यूप होता है, और यूप के ऊपर एक ऐसा काटते हैं, वो एक टोपली सी बनाते हैं ऐसे, ये समझो कि ये यूप का अंतिम सिरा है, वो टोपली बनाते हैं, तो उसको ढक्के रखना चाहिए, नहीं तो यजमान की मृत्यु हो सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि यूप क्या है, जो अंतरिक्ष और द्युलोक के बीच में एक तत्व है, और उसको ढक्के रखना चाहिए, ढक्के रखने का मतलब उसको रक्षित रखना चाहिए, तो ये ऐसा कहते हैं कि नहीं तो यजमान की मृत्यु हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि यजमान को तत्व जाननी होगा, और जिसको तत्व जाननी उसकी मृत्यु ही, मृत्यु विप्राण जिघान सती। नो पस्कुरियात, नो उपरस्य आविष्कुरियात, ऊपर के हिस्से को यूप के खुला ना छोड़े, यद उपरस्य आविष्कुरियात, खुला छोड़ेंगे गर्तेष्ठा स्यात, तो गड्ढे में ठहर जाएगा। प्रमायु को यजमान है, और यजमान क्या हो जाएगा, प्रकर्षण है, मायु क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इत्यभि निगम भवति, शतपथ ब्राह्मण का वचन होगा। रथोपि, अब गर्त का एक उदाहरण हो गया, रथोपि गर्त उच्चते, गर्त किसको कहते हैं, गर्ते गच्छ, इसका क्या अर्थ होगा, और दूसरा अर्थ क्या होगा, गड्ढे में गिर, शमशान में गिर। तो अब कौन सा कहां लिया जाएगा, ये समझदार के ऊपर है। घृणाते स्तुति कर्मणे, गृह स्तुति कर्म धातु पड़ी हुई निघंटु में, इस्तु ततम यानम, और ये क्या है, इस्तु ततम, इस्तु ततम यानम, इसकी बहुत अधिक स्तुति की गई है, सबसे श्रेष्ठ यान यही है, और ये यहाँ से द्यूलोक में जाके एक दिन में वापस आ जाता है। रथ है अधिकतर वेद में विमान का नाम है, अधिकतम विमान के लिए आता है, क्योंकि उसकी गति बड़ी तीव्र है, वो ऐसा चलता है कि बस यहाँ से बैठो, अभी चंद्रमा पे पहुँचो, वहाँ से इच्छा होगी देख लिया चंद्रमा, मंगल पे चलो और घूम फिर के आ जाओ, इतनी तीव्र गति से चलता है। ऑक्सीजन क्या है, आप तो प्राणायाम जानते हैं, यहीं से ले जाना भर के। अरे वो तो वरुण है, आपको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। हमने तो वहां भी 1 किलोमीटर दौड़ लगा दी थी तिब्बत में, मानस कैलाश पर्वत के नीचे, जहाँ बहुत कम ऑक्सीजन है, लोग गोली खा के चल रहे थे। रुद्राक्ष तो पहनना पड़ता है माला, वहां तो चाहिए ऐसी मालाएं। आरोहतो वरुण मित्र गर्तम, हे मित्र और वरुण गर्त में चढ़ जाओ, अर्थात बड़े जो मित्र और वरुण का रथ होगा वो कोई घोड़े से चलने वाला होगा, वो तो सीधा है तो परमाणु भट्टी से चलेगा या फिर पारे से चलेगा या सूर्य रश्मियों की गति से चलेगा वो। ये मित्र और वरुण स्वामी जी महाराज, ये दो शक्तियां हैं, इनको आपे तत्व के अंदर भी माना जाता है, ये आपे तत्व समझ लो कि आपे तत्व जो सूर्य के अंदर है वो इन दो तत्वों का मेल ही है, जल के सूक्ष्मतम रूप है, जायते पत्ते कामयमानस वासा ऋतु कालेशु उषा, ये सारे आ चुके हैं, हसन एव दंतान विवृणुते रूपाणि चतस्र उपमा, दो ही दिए ना यहाँ, तो दो कौन सी बच गई, भ्रात्रा इव और गर्तारु की, तो चार उपमाएं होंगी। न अभ्रात्रिम उपयच्छेत तो कम यस्य तद्भवति, वो अपनी जो कन्या को जिसका भाई नहीं है उसको वो पति को ना दे, मतलब पति के साथ ना भेजे, वहीं रखे, उसका विवाह कर ले तो, और ना करे तो भी ठीक है। अभ्रात्रि काया उपयमन प्रतिषेध है प्रत्यक्ष है, तो इससे उसका विवाह का भी प्रतिषेध है, प्रतिषेध का अर्थ ये प्रसज्य प्रतिषेध नहीं है, ध्यान देने की बात है, ये जो है प्रसज्ञ ना होगा तो कौन सा प्रतिषेध होगा, रिउदास है, ध्यान देने की बात है, क्योंकि वेद कभी भी ऐसी बातों को नहीं कहता है। पुत्रश्च पितुश्च पुत्र भाव, और वो पिता क्या करे उसमें पुत्र का भाव कर ले, मतलब उसको अपना पुत्र ही माने, और विवाह करना चाहे तो फिर पति ऐसा मिले कि जो वहां रहे। इससे देखो परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि अब उसका क्या होगा आगे, उसकी सारी संपत्ति का क्या होगा, उसके आगे परंपराओं का क्या होगा, फिर वो वहां रहेगी और उसका पति के तो क्योंकि कई भाई और भी हैं, तो एक हमारी और परंपरा चल पड़ेगी और कुल रक्षित रहेगा। और आगे इसी को बता रहे हैं, पिता यत्र दुहितु अप्रत्याया, उसी को आगे खोल रहे हैं, जो ये था ना सासद वहनी आया था ना पहले, उसके दूसरे मंत्र के दूसरे भाग की मैंने तो व्याख्या की थी, इन्होंने नहीं की थी, द्वितु सेकम रिंजन, इसकी व्याख्या नहीं की थी ना इन्होंने, यास्क जी ने व्याख्या नहीं की थी आप, हाँ तो वो उसकी व्याख्या अब कर रहे हैं, ये अलग से मंत्र नहीं है, हाँ उसकी व्याख्या है। पिता यत्र दुहितु, वही दिया था ना पीछे, अप्रत्याय, अप्रत्याय नाम है प्राक प्रदानात्, जिसको अभी दान नहीं दिया है, जिसका विवाह नहीं किया गया है, तो रेत सेकम प्रार्जयति, जो उसका पति है उसको वो प्रार्जयति नाम है प्रकल्पयति, उसको सिद्ध्यति, उसको सिद्ध कर रहा है कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए। संदधाति आत्मानम, और अपनी आत्मा में ये बात बैठा रहा है, संगमेन मनसा, एक ही भूये मनसा, कि जो मैं चाहता हूं वैसा मन आपका भी हो जाए, तो ये किसके लिए चल रहा, नाना जी जो बनेंगे वो जामाता जी को समझा रहे हैं जो होने वाला है, इसलिए प्राक प्रत्यय कहा है ना इन्होंने, प्रत्यय मतलब देने से पहले ही, फिर शर्त नहीं लगा था बाद में, पहले ही पणबंध कर रहे हैं ये। अब अंतिम जो ऋचा है ये इस बात को कह रही है कि कन्या का दाय भाग होता भी है और नहीं भी होता, कब होता है और कब नहीं होता। न जामये तानवो रिक्तमारेक चकार गर्भम सनितुर निधानम यदि मात्रो जनयंत वेन्निम अन्यकर्ता सुकृतो अन्य रिंधन। अब ये उस कन्या की बात है जिसके भाई भी हैं दो तीन, है ना, ये उसके लिए मंत्र है कि न जामये तानव रिक्तमारेक। जामये पीछे कहा था ना कि उत्पादयन्ति अस्मिन् पुत्र पुत्रादय इति जामी जमयन्ति उत्पादयन्ति, तो जामी नाम है कन्या, कन्या नाम है भगिन्ये भगिनी बहन। न जामये तानव आत्मज रिक्तमारेक पैतृक संपत्ति मा प्रददौ, इनको पैतृक संपत्ति नहीं देनी चाहिए। चकार गर्भम सनितु निधानम, किंतु क्या करना चाहिए इनको, सनितु, सनितु नाम है जो इसका पति होगा आगे, जिसको ये पालिता जो इसका आगे बनेगा, सनितु मतलब जिसको दान दी जाएगी, जो इसका पति होगा सनितु गर्भ चकार गर्भम, तो उसको जो गर्भ उत्पन्न करने में समर्थ जो इसका पति होगा उसको निधानम चकार है, तो उसको एक धन आदि देके उसका विवाह जरूर कर देंगे, मतलब उसका पालन कैसे करेंगे, उसके विवाह में कुछ धन देंगे, अच्छा उसका विवाह करेंगे, बाद में पैतृक संपत्ति अगर भाई कई हैं तो, क्योंकि विवाह कर दिया कर्तव्य पूरा हो गया फिर आगे आते जाते भी देते रहेंगे, किंतु मकान का विभाग नहीं करेंगे, दुकान का विभाग नहीं करेंगे, जमीन जायदाद का विभाग नहीं करेंगे, बाकी धन आदि तो चलता रहेगा। यदि मात्रो जनयंत वहनिम, और जो माताएं हैं, मात्रा मतलब माता और पिता दोनों ही हैं, वहनिम नाम है पुत्रम व पुत्रिम व दोनों है इसमें, वहन समर्थ जो है संतान उत्पन्न करने में समर्थ जो है उनके लिए वहनी शब्द का मुख्य रूप से प्रयोग होता है। तो ऐसे क्योंकि विवाह का उद्देश्य है श्रेष्ठ संतान पैदा करना, वो समर्थ होने ही चाहिए उसमें। तो जनयंत वहनिम अन्य कर्ता, अन्य तो कर्ता है, अन्य कर्ता अर्थात दाय भागस्य कर्ता अन्य वर्तते, कर्ता नाम है प्राप्त है, दाय भाग को प्राप्त करने वाला तो अन्य है यानी पुत्र है, और सुकृतो अन्य रिंधन, और सुकृत जो है ये दोनों ही हैं, क्योंकि दोनों को समान रूप से पैदा किया है, समान रूप से पाला गया, ये दोनों ही, कन्या भी सुकृत है और पुत्र भी सुकृत है। अन्य रिंधन, किंतु इसमें ऐसा होते भी अन्य तो रिंधन है और अन्य करता है, अन्य रिंधन कौन होंगे, रिधि समृद्धि, रिंधन नाम है प्राप्तवन, अन्य तो धन आदि से को प्राप्त करती रहेगी बीच बीच में, और अन्य करता होगा मतलब सारी संपत्ति का कर्ता कौन होगा आगे, पुत्र होगा, और अन्य जो कन्या होगी वो रिंधन होगी, भरण पोषण के योग्य होगी, जब भी आएगी उसको कुछ देंगे, समस्या होगी उसको भी दूर करेंगे, धन की जरूरत पड़ी वो भी देंगे, किंतु संपत्ति को नहीं बांटेगा। हाँ पति उसका गरीब है वहां घर में उसके नहीं है तो संपत्ति देनी पड़ेगी वो भी देंगे, किंतु सामान्य रूप से अब उसके पति का और उसके ससुराल वालों का कर्तव्य है, और ये ही व्यावहारिक भी है, क्योंकि यहाँ चार पांच भाई हैं, वैसे पहले ही काम नहीं चल रहा और झगड़े भी बढ़ते हैं, हरियाणा में तो कई जगह झगड़े भी हो रहे हैं इस विषय में। हाँ इसको कर ले वही होनी चाहिए, वही होगी तभी तो बात बनेगी ना। न जामय भगिन्यै जामी अन्य अस्याम जनयंती जाम अपत्यम, जिसमें संतान पैदा की जाते है इसलिए जामी कहते हैं इसको। जमतेर व सात गति कर्मण, ये जान गमन प्राप्ति करती रहती है, निर्गमन प्राय होती और निर्गमन प्राय भी होती है। भाई अभी पतिकुल में है, फिर घर में कोई काम आ गया, फिर यहाँ आ गई, फिर वहां चली गई, आना जाना लगा ही रहता है, लगा रहता है ना। तानवे आत्मजय पुत्र रिक्तम प्रारिचत प्रादात, तो इसको तो हमने धन दे दिया, चकारेनम गर्भ निधानीम, और इसके लिए हमने इसका विवाह कर दिया, ऐसे पति को दे दिया। सनितु हस्तग्रास्य, हस्बैंड हस्तग्रह से ही हस्बैंड बिगड़ के बना, हस्तबंद है उसी से हस्बैंड बन के बिगड़ गया, ऐसे 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 निर्वचन ना करें। कोई विवाह में हस्तबंद क्रिया होती है क्या?
पानी बंद
तो हस्तबंद ही हो गया, हाँ तो वो उसी से बिगड़ के हस्बैंड बन गया। मतलब बहुत से शब्द ऐसे ही बिगड़े हुए, सीधे ही लग रहे। तो सनितुर हस्त ग्रहस्य यदि मात्रो अजनयंत, इन दोनों को ही माता पिता दोनों को समान रूप से उत्पन्न करते हैं, वैन्यम पुत्र मैवन्यम च स्त्रियम, तो दोनों ही अर्थ निकल गए वैन्य के। अन्यतर संतान कर्ता भवति, अन्य तो एक संतान का कर्ता होता है, अर्थात जो वहां रहेगा उसी की संपत्ति, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी रहेगी। और पुमान दायाद है, अन्यतरो पुमान कौन हो गया संतान कर्ता, पुमान हो गया, और वो क्यों हो गया दायादय हो गया। अन्यतरो अर्धित्वा जामी पर दिए थे परस्मी, और उसको पालन पोषण करके शिक्षित करके अर्धित्व करते बढ़ा करके, ये नहीं कि गरीब रखा उसको और खुश धनवन भी देना है साथ में। जामी पर दिए थे परस्मी, इसलिए नियम तो ये हो गया कि अगर कन्या मतलब दाय भाग की, अंतिम तो निर्णय यही रहा मंत्र का कि दाय भाग की स्वामिनी वो, उसको अर्धित्व ध्यान देने की बात है, उसको विदेशी बनाना है, धन भी देना है, बीच बीच में समस्या वो भी दूर करनी है, किंतु संपत्ति मकान दुकान नहीं बांटने। धन अर्धित्व तो लिखा हुआ है, धन तो दे सकते हैं बीच बीच में जरूरत पड़े तो भी। संतान को करने वाला है आगे, मतलब संतान के जितने भी कर्तव्य हैं वो करने वाला है, संतान के जितने भी कर्तव्य हैं तो वो पिंड दान करेगा, जितने भी आए थे सारे वो पुत्र करेगा, और कन्या अब अपना वहां चली गई है, तो ये तीसरा पाद हो गया। कल का जो है द्वितीय पाद जो महत्वपूर्ण है, एक बार समय मिले तो इसको देख भी ले। कल तो वही चलेगा जो चलता था हमारे समय, 9 बजे से करो तो 9 बजे से कर लें, 9:15 तो चल ही रहा, जैसे आप सब लोग चाहें। तो जी ऑन 9 बजे से, क्यों स्वामी जी आगे 6 अध्याय तक ज्यादा नहीं है, 7वें में मेहनत मतलब बोर्ड पे चलेगी शुरू में, तो 6 में तो बस ऐसे मंत्र आएंगे ये, यहाँ से 6 तक और बस ऐसे चर्चा आएंगे। 9 बजे से कर लेते हैं, क्योंकि वो 10 मिनट प्रतीक्षा में चले जाते हैं कि कब पाठ का हो रहा है, ज्यादा हो जाएगा। इसमें जो कल आ रहा है ना, जो 3 प्रकार के अर्थों की बात है, 2 प्रकार के अर्थ कल दिखाएंगे एक मंत्र में, सूर्य का विज्ञान और आत्मन विज्ञान। वही मंत्र सूर्य के विज्ञान में कैसे घट रहा है, और वही मंत्र आध्यात्म विज्ञान में ये खुद घटा के कल मंत्र बताएंगे। तो एक बार आचार्य पूज्याचार्य विजयपाल जी कहा करते कि भाई एक बार तो पहले पाठ देख के आ जाओ, एक बार पढ़ाने वाले से पढ़ लो, और एक बार जाके देख लो, पक्का हो जाता है। तो यदि पहले भी एक बार आप देखें ना, तो यहाँ समझ में आएगा, मोटा मोटा ही देख लें, पूरा ना देख, ये पता लग जाए ना विषय क्या है, जैसे कल का विषय क्या है ये पता लग जाए, ऐसा मंत्र आएगा तो एक मन में भावना बन जाएगी। तो इतना ही रखते हैं, समय भी हो गया, तो एक एक पाद ये रोज हो जाएंगे, 18 पाद हैं, 6 अध्याय हैं, तो समझो कि 18 दिन से पहले हो जाएगा। फिर अब की परीक्षाएं जो हैं वो 3रा 4था 5वा 6टा इकट्ठी, क्योंकि अब ज़्यादा आप भी देखेंगे जो समझने वाला विषय है वो सीधा ही समझ में आ जाता है, अलग से चीज़ों को देखना। हाँ 7वें में ज़रूर हम फिर बोर्ड का प्रयोग करेंगे, पूरा ऋग्वेद का भी करेंगे। क्योंकि वो यदि आप लोगों ने थोड़ी भी मेहनत कर ली उसमें तो देवताओं से समस्या नहीं रहेगी, और देवता फिर ब्राह्मण के अधीन नहीं, वो है ना, क्या है मंत्र, देवताधीनम जगत सर्वम, ये सारा कुछ परमाणु क्या है, देवता ही तो है, जितने भी सूर्य भी एक देवता है, चंद्र भी देवता, सारे देवता है, वायु भी है, देवताधीनम जगत सर्वम और देवता च मंत्राधीनम, देवता कहाँ रहते हैं, मंत्रों में रहते हैं, और मंत्र कहाँ रहते हैं, मंत्राश्च ब्राह्मणाधीनम तस्माद ब्राह्मण प्रसीदति, इसलिए वो हमेशा आनंदित रहता है कि देवता उसके अधीन है। तो ठीक है जी, एक बार ओम का उच्चारण कर लें। हाँ जी, ऑनलाइन वाले 9 बजे से कक्षा है, कल तो आप लोग तो 5 बजे 5 मिनट पहले आ ही जाते हैं, ये लोग 9:10 पे आते थे, तो आप लोग 9 से 5 मिनट पहले ही आए। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते। आचार्य जी, यात्रा अच्छी रही? यात्रा अच्छी रही, वैसे तो